उस दिन सिर्फ 60 ओवरों में मात्र 171 रन बनाकर जब भारतीय टीम पवेलियन लौटी और सबसे आखिर में आउट होने वाले वीवीएस लक्ष्मण अपने पैट खोलने लगे तो उनके कोच जॉन राइट ने उनके कंधे पर धीरे से हाथ रखकर कहा, लैक्स अपने पैड मत उतारो। क्यों जॉन? लक्ष्मण ने पूछा। जॉन ने कहा, तुम अगली इनिंग में नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हो। ये सुनते ही लक्ष्मण की बाँछें खिल गईं। उस ऑस्ट्रेलियाई टीम को अगर अजेय कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लगातार 16 टेस्ट जीतने के बाद वो कोलकाता पहुंचे थे। एक हफ्ते पहले ही उन्होंने मुंबई में भारतीय टीम को 10 विकेट से हराया था। ईडन गार्डन में टॉस जीतने के बाद जब माइकल स्लेटर ने जहीर खां की गेंद पर स्टांस लिया तो स्टेडियम में बैठे एक दर्शक ने कहा, एटाओ जाबे, यानी ये मैच भी हम हारेंगे। स्लेटर, लैंगर और हेडन सब ने रन बनाए और पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 291 रन बनाए। लेकिन दिन रहा कमबैक कर रहे हरभजन सिंह के नाम, जिन्होंने लगातार 3 गेंदों पर पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट और शेन वॉन को पवेलियन भेजकर टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से पहली हैट्रिक ली। उस मैच में अंपायरिंग कर रहे श्याम कुमार बंसल को वो मैच अभी तक याद है।
हरभजन सिंह गेंद कर रहे थे और मेरी एंड की तरफ से वो गेंद कर रहे थे। शुरू में जब उन्होंने 1 या 2 ओवर फेंके तो वो उस तरह की गेंद नहीं कर पाए जैसी कंट्रोल की हुई गेंद होनी चाहिए थी। रिकी पॉन्टिंग बैटिंग कर रहे थे, मैथ्यू हेडन आमने सामने दोनों खेल रहे थे और 2-3-4 चौके उनके ऊपर लग भी चुके थे, तो वो थोड़े से डिस्टर्ब थे। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन खुदा की कुदरत होती है, एक गेंद उन्होंने इतना अच्छा गेंद किया, आउटसाइड दी ऑफ स्टिक गेंद टर्न हुआ, रिकी पॉन्टिंग सफल हुए। जैसे वो सफल हुए सामने खड़े हो गए और उनके सामने टांग के ऊपर गेंद लगी, देयर वॉज नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू गिव हिम आउट LBW। उसके बाद में गिलक्रिस्ट आए अगली बॉल के ऊपर, वो LBW हो गए और उसके बाद में शेन वॉर्न आए। शेन वॉर्न खेलने लगे तो जो गेंद उन्होंने खेली शॉर्ट लेग, उसके ऊपर एस रमेश खड़ा हुआ था। वहाँ पर जब उन्होंने गेंद खेली तो गेंद खेलते वो गेंद निकल करके एस रमेश के पास चली गई। मैं वहाँ पर उस समय ब्लाइंड हो गया, मेरे को नहीं दिखाई दिया कि ये कैच क्लियर हो गया नहीं हो गया है, तो मेरे को वो कैच रेफर करना पड़ा थर्ड अंपायर को। थर्ड अंपायर ने वहाँ से ग्रीन सिग्नल दिया कि यस ही इज आउट।
No Indian bowler has ever taken a test hat trick. Here we go. Can he do it? Oh, he's got him. Has he got him? Has he got him? He's going over to the square leg. The celebration's on. He wants a replay. He wants a replay. We don't need the light. Yeah, he's given him.
दूसरे दिन स्टीव वॉ और जेसन गिलेस्पी स्कोर को 445 रनों तक ले गए। भारतीय टीम की मैग्रा, गिलेस्पी, कास्प्रोविक्स और वॉन के आगे एक न चली और पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गई। ईडन गार्डन पर बैठे उसी दर्शक के मुंह से निकला, एटाओ गेलो, यानी ये मैच भी गया। थोड़ी बहुत इज्जत बचाई वीवीएस लक्ष्मण के 59 रनों की पारी ने। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फॉलो ऑन किया और भारतीय टीम के मैनेजर चेतन चौहान के मन में एक नई रणनीति ने जन्म लिया।
मुझे याद है कि वीवीएस लक्ष्मण नीचे बैटिंग कर रहे थे और वो 6 नंबर पर और वो नॉट आउट है और हम लोग बहुत कम रन आए, तो मैं ऐसे ही गया, मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और 3 नंबर कभी बैटिंग की है आपने और कर सकते हो, तो उनका मैंने पूरी जिंदगी में 3 नंबर पर ही बैटिंग की है और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 नंबर बैटिंग करना है। तो फिर मैंने जाके जॉन राइट से पूछा, मैंने कहा कि ये बहुत अच्छे फॉर्म में है और अभी नॉट आउट रहा है, इसी को इनिंग आगे बढ़ाने दीजिएगा, इसको आप प्रमोट कर दीजिएगा। आप प्रश्न ये उठा कि राहुल द्रविड़ 3 नंबर के खेलते थे उनको कौन बोलेगा, तो मैंने कहा ये काम जो है फिर मेरे ऊपर सौंपा गया। तो मैंने राहुल से ऐसे जाके पूछा, मैंने कहा राहुल प्लीज थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है अगर आप नीचे बैटिंग करें? तो राहुल वॉज वेरी नाइस, राहुल द्रविड़ एब्सोल्यूट जेंटलमैन, उसने कहा टीम के हित में जो करना चाहते हैं आपके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और इस प्रकार से वीवीएस लक्ष्मण 3 नंबर बैटिंग करने गए।
बाद में भारतीय टीम के कोच जॉन राइट ने अपनी किताब इंडियन समर्स में लिखा,
मुझे याद था यन चैपल तर्क दिया करते थे कि आपका नंबर 3 स्ट्रोक प्लेयर होना चाहिए जो विपक्ष के खेमे में घुसकर हमला करे और किसी भी खराब गेंद को बख्शे नहीं। राहुल द्रविड़ हमारे नियमित वन डाउन बल्लेबाज थे लेकिन वो धीमा खेलते थे। इसलिए जब लक्ष्मण 59 रनों पर आउट होकर लौटे और हमें फॉलो ऑन मिला, मैंने लक्ष्मण से कहा, लैक्स अपने पैड मत उतारो, तुम इस पारी में नंबर 3 पर जाओगे।
शुक्र यह रहा कि शिव शंकर दास और रमेश ने पहले विकेट के लिए 52 रन जोड़े और लक्ष्मण को थोड़ा आराम करने का मौका मिल गया। रमेश के आउट होने के बाद लक्ष्मण क्रीज पर उतरे और पहली गेंद से ही उन्होंने गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेना शुरू कर दिया। दास और तेंदुलकर उनका ज्यादा साथ नहीं दे पाए। गांगुली थोड़ा जमे, लेकिन 48 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर वो भी पवेलियन लौट गए। नंबर 6 पर द्रविड उतरे और क्रीज पर आते ही पोंटिंग ने उन्हें स्लेच किया, नंबर 3 से नंबर 6 और नंबर 6 से टीम से बाहर। द्रविड पर इसका कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने एक छोर संभाल लिया। तब तक लक्ष्मण अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने लगे थे।
लक्ष्मण ने ग्राउंड के कोई कॉर्नर में ऐसी जगह नहीं थी जहां शॉट्स नहीं खेले, उनको फोर्स कर दिया नेगेटिव बॉलिंग करने के लिए। 7 खिलाड़ी 8 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर लेकर के उन्होंने बॉल करना चालू किया, उसके बावजूद उसने कवर और एक्स्ट्रा कवर में शॉट खेले। आप सोच सकते हैं कि बाहर निकल करके कवर और एक्स्ट्रा कवर के अंदर शॉट खेलना छोटी मोटी बात नहीं होती, गजब खेला। गिलेस्पी को उसने एक सूरत के अंदर, मैं आपको ठीक बताता हूँ, उस समय ऐसा कर दिया कि वो गेंद कहाँ करे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गेंद कहाँ करूँ। शेन वॉन को लेग ब्रेक राउंड दी स्टंप आकर के लेग ब्रेक को गेंद कर रहे थे, उनको कवर और एक्स्ट्रा कवर के अंदर वो शॉट मार रहे थे। तो उस दिन जो VVS लक्ष्मण खेले हैं, मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी बैट्समैन वो बैटिंग नहीं कर सकता था जो उन्होंने बैटिंग की।
लक्ष्मण ने पहले शतक पूरा किया, फिर दोहरा शतक, और फिर उन्होंने गावस्कर का 236 रनों का सर्वश्रेष्ठ भारतीय पारी का 15 साल पुराना रिकॉर्ड
तोड़ा।
चौथे दिन लक्ष्मण और द्रविड़ पूरे दिन खेलते रहे। इस बीच द्रविड़ ने भी अपना शतक पूरा किया। दिन समाप्त होते होते द्रविड़ की पिंडली में क्रैम्प्स होने लगे थे, उनसे खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा था। बाद में भारतीय टीम के फिजियो एंड्रयू लीपस ने लिखा,
मुझे याद है कि जैसे ही द्रविड़ को क्रैम्प्स शुरू हुए, जॉन राइट मुझ पर चिल्लाए, द्रविड़ को ठीक करो। हमारे लिए बहुत जरूरी था कि द्रविड़ पिच पर बने रहें और रिटायर्ड हर्ट न हो। क्रैम्प्स का तुरंत कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ मनोवैज्ञानिक इलाज ही किया जा सकता है। मैंने मैदान पर ही द्रविड़ को लाल रंग की विटामिन बी की गोलियां दी और कहा, इनसे तुम्हारा दर्द जाता रहेगा। राहुल ने मुझ पर विश्वास किया और मैदान पर इस उम्मीद में डटे रहे कि गोली अपना रंग दिखाएगी। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे झूठ ने असर दिखाया, राहुल के जीवट ने उन्हें वहां डटे रहने की क्षमता दी।
चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर जब दोनों बल्लेबाज नाबाद पवेलियन लौटे तो वो बहुत मुश्किल से चल पा रहे थे। जॉन राइट ने अपनी किताब इंडियन समर्स में लिखा,
द्रविड़ डिहाइड्रेशन के शिकार थे। उस जमाने में गर्दन को ठंडा रखने वाले रुमालों का चलन नहीं हुआ था, इसलिए हम तौलियों को काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करते थे और उन्हें बर्फ में डुबो कर गर्दन पर लगाने के लिए भेज देते थे। जब दिन का खेल खत्म होने के बाद ये दोनों पवेलियन लौटे तो आधा दर्जन डॉक्टर उन पर काम करने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। लक्ष्मण को खाने की मेज पर लिटाया गया और द्रविड़ को फिजियो की मेज पर, और दोनों को तुरंत ड्रिप चढ़ाई गई।
VVS लक्ष्मण बताते हैं कि पवेलियन लौटने पर किसी ने हमारी पीठ नहीं थपथपाई, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी पीठ पर अगर एक पंख भी छुलाया जाता तो हम उसके बोझ से जमीन पर गिर पड़ते। लक्ष्मण ने कहा,
रियलिस्टिकली वी हैड नो चांस ऑफ विनिंग द गेम फ्रॉम दैट सिचुएशन, सो ऑल आई वांटेड टू गो आउट एंड डू वाज बैट एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड एज इट टर्न्ड आउट आई थिंक इट वाज।
उस स्थिति से हमारे लिए मैच जीतने का कोई मौका नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं पिच पर जाकर जितना लंबा संभव हो सके खेल सकूं। पहली गेंद से ही गेंद मेरे बल्ले के बीचों बीच आ रही थी। मैग्रा और गिलेस्पी के खिलाफ मेरी योजना साफ थी कि उन्हें जहां तक संभव हो वी में ही खेलो और समानांतर शॉट लगाने से बचो। उनके बाद कास्परोविक्स और वॉर्न आए। कास्पर्स चूंकि गेंद को रिवर्स स्विंग कराते थे, इसलिए उन्हें भी मैंने मिड ऑफ के दाहिने और मिड विकेट के बाएं के बीच जो जगह होती है वहीं खेलने का फैसला किया। मेरे लिए बाकी मैदान का जैसे कोई वजूद ही नहीं था। वॉर्न के खिलाफ मेरी रणनीति उनकी लय बिगाड़ने की थी। जैसे जैसे वो गेंद करते जाते थे उनकी धार कम होती जाती थी। इसका मतलब था कि उनके कंधे थक रहे थे और हवा में गेंद पहले से कहीं धीमी गति से आ रही थी।
शेन वॉन को जिस तरह की तकनीक से लक्ष्मण ने खेला उस पर सबसे दिलचस्प टिप्पणी इयान चैपल की तरफ से आई।
The thing about that innings that will always stick in my mind is the way he came down the pitch to Shane Warne. I mean, he is the best leg spinner in the world at the time, bowling to him, spinning the ball a lot.
उस इनिंग्स के बारे में हमेशा एक चीज मुझे याद रहेगी, जिस तरह से लक्ष्मण ने क्रीज से काफी बाहर आकर शेन वॉर्न को खेला। उस समय वॉर्न दुनिया के सबसे अच्छे लेग स्पिनर थे और गेंद को काफी स्पिन करा रहे थे। मेरे हिसाब से एक अच्छी पिच पर भी सबसे मुश्किल शॉट होता है एक लेग स्पिनर को ऑन ड्राइव करना। उस दिन लक्ष्मण क्रीज से 3 कदम आगे निकलकर बॉल की पिच पर आकर वॉर्न को ऑन ड्राइव कर रहे थे। मुझे याद है मैंने मैच के बाद शेन वॉर्न से पूछा था, क्या तुमने उस मैच में खराब गेंदबाजी की? वॉर्न ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने भी देखा कि पिटने के बाद वो उनको स्टंप आउट कराने के चक्कर में शॉर्ट गेंद करते थे, तो लक्ष्मण पीछे जाकर उन्हें मिड विकेट पर 4 रन के लिए पुल कर देते थे। मैंने इससे पहले किसी को इतनी अच्छी तरह से स्पिन गेंदबाजी को खेलते हुए नहीं देखा था।
पांचवें दिन लक्ष्मण 281 और द्रविड़ 181 रनों पर आउट हुए। भारत ने पारी समाप्ति की घोषणा की और ऑस्ट्रेलिया को 75 ओवरों में 384 रन बनाने की चुनौती दी। चाय तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 161 रन बना भी लिए थे और मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा था, तभी तेंदुलकर ने अपना कमाल दिखाया।
सचिन तेंदुलकर की एक ब्यूटी है, मुझे मौका मिला है उनको बहुत सारे टेस्ट मैच कराने का, उनकी बहुत अच्छी ब्यूटी, वो लेग ब्रेक के साथ ऑफ ब्रेक बहुत अच्छी डालते हैं और कंट्रोल के साथ डालते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड बैट्समैन आए तो उन्होंने ऑफ ब्रेक करी, जब उनके लेफ्ट हैंड बैट्समैन आए तो उनके लिए लेग ब्रेक करी। कहने का मतलब उन्होंने दोनों तरफ से इस तरह से बॉलिंग करी कि अगर कोई भी बॉल मिस होगी और टांग के ऊपर लगती है तो गुंजाइश ही नहीं बचेगी LBW ना होने की। शेन वॉर्न ने उनकी गेंद को लेफ्ट कर दिया ये समझ करके ये लेग ब्रेक है, बाहर जाएगी, गेंद अंदर आई और LBW।
मैच भारत की गिरफ्त में तब आया जब हरभजन ने एक बार फिर पॉन्टिंग को सिफर पर दास के हाथों कैच करवाया। अंतिम सत्र में ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिरे और जब हरभजन ने मैग्रा को LBW आउट किया, भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया। उस टीम के विकेट कीपर नयन मोंगिया याद करते हैं।
सच है कि जहाँ पर सारे बैठे हुए थे डेल लग ड्रेसिंग रूम में, अपनी अपनी कुर्सी पे, अपने अपने चेयर पे, जिस तरह खड़े हुए थे कि इस तरह बैठे हुए थे, वो सारे उसी तरह ही खड़े रहे, उसी तरह ही बैठे रहे, उसी जगह ही बैठे रहे, क्योंकि जिस तरह की साझेदारी है, जिस तरह की बल्लेबाजी धीरे धीरे होती गई, जिस तरह का कॉन्फिडेंस आता गया जब रन बटोरते गए लक्ष्मण और द्रविड़, तो वो बयां नहीं किया जा सकता कितनी खुशी का माहौल और खुशी की लहर थी।
भारत के कप्तान सौरभ गांगुली ने बाद में कहा कि इस जीत ने हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट की शक्ल बदल दी।
We didn't realize that we would win till the last seven overs because McGrath and Gillespie had a big partnership. They batted for about 7 overs till Harbhajan got him out.
आखिरी 7 ओवर तक हमें एहसास नहीं था कि हम जीतेंगे, क्योंकि मैकग्रा और गिलेस्पी लंबी साझेदारी निभा रहे थे। इस जीत को मैं चमत्कार से कम नहीं कहूंगा। फॉलो ऑन के बाद 600 से अधिक रन बनाना और ऑस्ट्रेलिया जैसी महान टीम को 2.5 सत्रों के अंदर आउट करना, इस तरह की चीजें रोज रोज नहीं होती। इस जीत ने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया।
ये संभवतः टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा टेस्ट मैच था, जब किसी टीम ने फॉलो ऑन के बाद दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम को हराया था। ईडन गार्डन के दर्शक तो हतप्रभ थे ही, टेलीविजन पर मैच देख रहे करोड़ों लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। ये भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम क्षण था, जॉन राइट ने अपनी किताब में लिखा। मैंने करीब 80 टेस्ट खेले हैं और इतने ही करीब देखे भी हैं, लेकिन इस टेस्ट का कोई मुकाबला नहीं था। उस दिन भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होना मेरे लिए सम्मान की बात थी। रेहान फजल, BBC दिल्ली।